साधिगो भक्त वृंद जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिवचकाचार्य स्तोत्र सत्श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हिज कौन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय प्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा द्वारका धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय भागवत धर्म की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद पांचवा अध्याय 14 श्लोक नंबर 13 शीर्षक है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। एकदा कभी कभी असत प्रसंगात अभक्तों के संसर्ग में जो वैदिक नियमों के विरुद्ध है और अनेक धार्मिक संप्रदायों को जन्म देते हैं, निकृतमति जिनकी बुद्धि इस निम्न स्तर पर पहुंच चुकी होती है कि श्री भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, विद्वक स्रोत पर्याप्त जल से रहित नदियों में स्खलनवत कूदने के समान उभयथा दोनों ओर से अपि यद्यपि दुःखदम दुःखदाही पाखंडम निरीश्वरवादी मार्ग अर्थात पाखंड अभियाति अनुसरण करता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। कभी कभी इस भौतिक संसार रूपी वन में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है, तब उनके संपर्क से उसकी संपूर्ण मति भ्रष्ट हो जाती है। वह उथली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथा कथित साधुओं एवं स्वामियों की भी शरण में जाता है। वो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे ना तो वर्तमान में और ना भविष्य में भी लाभ प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। बद्ध जीव इन कपटी सन्यासियों और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में जाता है, जिससे उसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो सके, किंतु उसे ना तो आध्यात्मिक ना ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो कुछ जादू तिलस्म दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं और उनके अनुयायी उन्हें भगवान मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार के ठगी का बोलबाला है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है, संसार दाव नललीद लोक त्रणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तास्य कल्याण गुणर्नवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि अर्थात जीवन संघर्ष को शमित कर सके, किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वे ठगे जाएं, अथवा वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते। जान अनंत स्वर्ण राशि है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, सोने का रंग स्फुर दीप्ति या पीत मल के तुल्य है। अतः मनुष्य को सोना बनाने वाले गुरुओं के चंगुल में ना आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने रहुगण महाराज को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्तंभ में जिस प्रकार गुरु का वर्णन है उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है, शाब्दे परे च निष्णातम। ऐसा गुरु ना तो सोना बनाता है ना ही शब्दों की मायाजाल रचता है। वो वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वह समस्त भौतिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णता समर्पित होता है। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु के चरण कमल की धूल प्राप्त हो सके जो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। मैं फिर से ये अंतिम लाइन को दोहरा रहा हूँ। यदि मनुष्य को ऐसे गुरु के चरण कमल की धूल प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादाम् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धूय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम रामो हरि हरि। सभी का स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कथा में। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ कुछ लोग यहाँ नए हैं, आप तो इस संदर्भ से परिचित नहीं हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम है। पांचवा स्कंद में एक ऐसा एक कथा आती है जहाँ पे बहुत बड़ा एक राजा जिसका नाम है रहुगुण। राजा है तो अय्याशी तो है ना, राजा का मतलब है अय्याशी है, रानियाँ है, ऐश्वर्य है, शक्ति है। तो ऐसे राजा को रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बाहर से देखने के लिए एक अवधूत जैसा लगता है। अवधूत का अर्थ है ना, उसके कोई कपड़े सही है, एकदम गंदा है, दिखने में कोई आकर्षित नहीं है, और कोई ऐसे कोई पास जाएगा भी नहीं, एक भिखारी की तरह समझो, है ना। भिखारी तो मांगता है ना, तो हम जाके देते हैं दया से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इस व्यक्ति, ये जो अवधूत, जब वो बोलने लगता है तो राजा एकदम, क्योंकि राजा भी विद्वान है, उन दिनों में राजा ऐसे नहीं होते कि इलेक्शन से जीत जाते हैं और उनको गद्दी में बिठाया जाता है। ये बहुत ही उनमें क्षमता होती है, योग्यता होती है, ज्ञान होता है, भगवान के भक्त भी होते हैं। तो जैसे ही वो मुंह खोलते हैं और ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं तो राजा तुरंत उनको पूरा साष्टांग दंडवत कर देता। तो इस संदर्भ में जड़ भरत जो एक वैरागी अवधूत, इनको ऐसे उपदेश देते हैं राजा के उद्धार के लिए कि राजा तो भ्रमित है। भ्रमित का अर्थ है कि मैं राजा हूं, ये प्रजा है और मैं इन लोगों को नियंत्रण कर रहा हूं और ये मेरे ऐश्वर्य है। उस सब भ्रमित अवस्था से जगाने के लिए कई ऐसे बताते हैं, उनमें से आज का ये जो श्लोक है जो आपने सुना, मैंने अनुवाद बताया, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे कठोर शब्द, कई बार हमें जगाना है तो कठोर शब्द भी बोलना पड़ता है ना? नहीं तो अगर हम बहुत मीठे मीठे शब्द बोले तो उसका ज़्यादा कोई सीरियस लेते नहीं। तो यहाँ पे जड़वरद इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि गृहस्थ, विशेष गृहस्थ जीवन में सुनना है कि आपको बहुत कठोर शब्द हैं। पारिवारिक जीवन में बताया जाता है कि घर के सदस्य, आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी पैसे कमाओ, लेकिन घर के लिए पैसा कम ही पड़ता है, घर वाले ज्यादा ही मांगते हैं, और जो बचाते जाते हैं उसे बच्चे उड़ाते हैं, और उसके बाद वो इतना त्रस्त हो जाता है कि मैं इतना मेहनत करके घर आता हूं, कोई मेरा इज्जत भी नहीं करता। मैं घर के मालिक की बात कर रहा हूं, और अपने परिवार के लोगों की तरफ देखता है तो लोग बोलते हैं क्या है उसमें बड़ी बात, ये तो तुम्हारा काम है मेहनत करने का, हमारी देखभाल करने का। अरे कुछ अच्छे शब्द तो बोलो, मैं इतने थक के आया हूं। तो इतना त्रस्त हो जाता है, बहुत ही बेचैन होकर उसे समझ में नहीं आता मैं कहां भाग जाऊं यहां से, लेकिन नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? मोह होता है ना, बच्चे हैं मेरे, बच्चों को खुश देखकर वो खुश हो जाता है। तो आज का संदर्भ ऐसा है कि कई बार वो पैसे कमाता है, कुछ कुछ पुण्य कार्य से पैसे मिलता है, लेकिन पैसे खो जाता है, फिर त्रस्त हो जाता है, फिर ढूंढता है किससे मांगू मैं, किससे जाके उधार मांगता है, अरे यार दे दो यार, ऐसे उसकी अवस्था ऐसे होती है। इतने सब करने के बाद फिर उसके मन में एक ऐसा भी विचार आता है, मेरे में शक्ति नहीं है, ठीक है ऐसे कोई बाबा जी के पास जाते हैं, कोई साधु के पास जाते हैं। तो आज का श्लोक ये बता रहा है कि फिर ऐसे साधु के पास जाता है जिसको, उसको पहचानने की कोई क्षमता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है,
जो भी भगवा कपड़े में दिखा, कोई दाढ़ी है, कोई चमत्कार दिखाता है, कोई सोना निकाल के दिखाता है, कुछ ऐसे ऐसे करता है, बोलता है, ये उसको भगवान मान लेता है। तो उसका परिणाम क्या होता है, ये आज के भागवत के आज के श्लोक में बताया है। जिस तरह ऐसा बद्ध जीव संघर्ष करते हुए इस भौतिक संसार के पीड़ा, दुख, गर्मी से इतना त्रस्त होकर एक नदी ढूंढता है कहां पे कोई ठंडा पानी से उसके गर्मी को वो मिठा दे, और जाके वो नदी में खुद देता है, और पता चलता है खुदने के बाद भी वो नदी में पानी नहीं था, सिर्फ ऊपर ही ऊपर थोड़ा पानी था। तो ऐसे नदी में खुदने से क्या होगा, क्या होगा आपको लगता है? हड्डियां टूट जाएगी ना, तो उसकी हड्डियां टूट जाती है। तो इसका अर्थ है वो ना ही जहां पे आश्रय लेने गया उससे उसको कुछ उसकी समस्या सुलझ गई, ना ही उसकी पहले गर्मी थी जिससे वो त्रस्त हुआ था वो भी रहा, और जिसका आश्रय लिया उससे भी उसने परेशानी और बढ़ा दी। लेकिन आश्रय कहां लिया उसने, पाखंडी गुरुओं के। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि ये गुरु पाखंडी है, लेकिन तो कैसे समझे कौन गुरु पाखंडी है और कौन सच्चे गुरु हैं? इसके लिए हमारे आचार्य बताते हैं, जो संसार के इस दुख के बंधन से जो हमें मुक्त कर सकता है, जैसे संसार को बताया है कि जो वन में आग लगता है, तो जब वन में आग लगता है तो उससे वहां से बचने के लिए कोई उपाय है? कोई फायर ब्रिगेड आके बचा सकता है हमें? सिर्फ एक ही चीज बचा सकता है कि ऊपर से वर्षा हो। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु होते हैं, वो पहचानने का काम आपका है, उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत है। कोई भगवा कपड़ा दाढ़ी पहना है, कोई आश्रम में बैठा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपको संसार के दुखों से मुक्त करेगा। लेकिन हम भी ऐसे विचार से जाते हैं, अरे कुछ मिलेगा, मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूं, चलो इसके पास कोई शक्ति हो, कोई मिल जाएगा, तो इस भाव से जाता है तो वो उसको इस संसार का जो दुख से वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ज्यादातर हमारे देश में लोगों को धार्मिक होते हैं, श्रद्धा होती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है कि गुरु कौन है, एक सच्चा भक्त कौन है, और संसार के बारे में तो बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं होता कि संसार का बंधन क्या होता है। सब लोग समझते हैं, अरे मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, और कब गलत होता है तो अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं तो अच्छा कर रहा हूं। ये नहीं जानते हैं कि आप पूजा पाठ करो या नहीं करो, आपके कर्म के अनुसार जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो आज के इस संवाद में, जड़ भरत और रघुना में, एक ऐसे विषय को उल्लेख किया गया है कि जो कुछ आपको दिखता है उससे आप फंस मत जाना। आप फंस जाएंगे तो आपको जिस जगह पे आपने गलत जगह पे आश्रय लिया तो वहां पे सिर्फ आपका दुख और बढ़ते जाएगा। तो फिर ऐसे गुरु होते हैं जो हमें संसार के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, क्या उनके माथे पे लिखा हुआ रहता है कि मैं प्रामाणिक गुरु हूं? नहीं है ना। हाँ, अगर आपको सोना खरीदना है लेकिन सोने को कभी देखा ही नहीं है, किसी से पूछा अरे सोना कैसा दिखता है, तो वो बोलता है सोना एक लोहा जैसा, उसमें रंग पीला होता है, थोड़ा चमकता है। अच्छा ऐसा है क्या? और जाता है सोना खरीदने, और सोना बेचने वाला वो तो ठगता है आपको, पीतल दिखाता है, देखो पीला है, देखो ये भी लोहा जैसा है ना, मेटल है, चमकता है। तो इसमें गलती किसकी है? आपने खरीदने गए थे सोना, पैसा भी दिया लेकिन खरीदा क्या, पीतल। तो इसमें गलती किसकी हो गई, सोने की गलती हुई या पीतल की गलती हुई? खरीदने वाले की गलती हो गई, अज्ञान। तो अज्ञान में फंसना नहीं चाहिए, सच्चा प्रामाणिक गुरु हमें हमेशा ज्ञान देता है। तो हमारे इतिहास में गुरु तो बहुत है ऐसे प्रामाणिक गुरु। सो कुछ 50 साल पहले की जो इतिहास है, यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान हैं कृष्णमूर्ति श्रील प्रभुपाद, जो ऐसे उम्र में अकेले चले गए पाश्चात्य देश में और ऐसे लोगों के संपर्क में थे वो, जो ऐसे जो एक शुद्ध गुरु कभी ऐसे लोगों के पास जाएंगे नहीं, लेकिन उनको उन्होंने हाँ ऐसे अपनी दया शक्ति और ज्ञान से उनको इस संसार के बंधन से मुक्त किया, वो वैष्णव बन गए और आज के दिन वो इस संसार में बद्ध जीवों को मुक्त कर रहे हैं। तो ऐसे होती है गुरु की शक्ति, वो खुद को तो मुक्त कर सकता है लेकिन जो उनके संपर्क में आते हैं उसको भी मुक्त कर देता है, क्योंकि उनमें इतनी दया होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इतने भौतिक संसार के सुख, भौतिक संसार के विषयों से इतने प्रभावित है कि हमें लगता है कि इसके आगे जीवन में कुछ है ही नहीं, बस भोग ही करो। तो इसलिए कोई साधु भी आ जाता है तो उससे यही मांगने जाते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद के साथ भी ऐसे हुआ था, जब वो अपने पाश्चात्य देश के शिष्यों के साथ आ गए और एक बार ट्रेन में बैठे थे यहाँ पे भारत देश में प्रवास कर रहे थे, तो दूसरे बोगी में किसी को पता चल गया जो थे अपने श्रद्धालु थे, धार्मिक भी थे, मालूम था कि साधुओं का आदर करना चाहिए, तो आ गए और प्रभुपाद से मांगने लगे दो तीन लोग परिवार के लोग, स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। अभी स्वामी जी ने पहचाना इनका आशीर्वाद मांगने का हेतु क्या है, यानी हमारे बिजनेस को बढ़ाओ, मेरी बेटी की शादी करनी ही है, मेरे बेटे को ये कर दो, तो समझ गए। तो प्रभुपाद ने क्या है ऐसे लोगों को मैं क्या ध्यान दूंगा, तो वो बोलते ये सब इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार 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 बार। तो फिर उन्होंने कहा देखो अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, ये देख रहे हो पाश्चात्य के जो नव युवक हाँ इन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर सर मुंडा कर शिकार रख कर भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए, तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। तो जैसे उसने सुना, अरे अरे प्रभुपाद ये आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे, कर कर भाग गए। तो ये है हमारी स्थिति, हम सच्चे जो आशीर्वाद को भी नहीं जानते। हाँ प्रभुपाद पहली बार जब हमारे देश में आए तो एक ऐसे बहुत ही अमीर उद्योगपति थे, तो उस उद्योगपति का वो परिचय दे रहे थे, ये हमारे ऐसे उद्योग प्रभुपाद दे रहे थे, ये ऐसे ऐसे व्यक्ति है, इनका बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत पैसा है, इन्होंने ऐसे इतने पैसे इन्होंने किया है, बहुत दान भी करते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हो गया, प्रभुपाद ये क्या बोल रहे हैं आप मेरे बारे में। तो उन्होंने माइक लिया और प्रभुपाद आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन आप तो सिर्फ 40 रुपया लेकर 40 करोड़ का संपत्ति आपने उत्पन्न किया है। तो प्रभुपाद ने कहा तो मैं प्रभुपाद कहने के पहले वो उद्योगपति कहने लगा तो मैं क्या हूं, मेरे पास क्या है ना, आपने तो 40 रुपये से 40 करोड़, इसका मतलब कितने बड़े उद्योगपति हो गए। तो प्रभुपाद ने कहा तो ठीक है तुम भी मेरे बिजनेस ज्वाइन कर लो। तो जैसे वो सुना मेरे बिजनेस ज्वाइन कर लो, नहीं 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 प्रभुपाद हो तो ठीक है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, मैं थोड़ा दान भी देते रहूंगा, मंदिर आते रहूंगा, मुझे ये मत बताओ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सच्चा वरदान प्राप्त करना, सच्ची हमारे जीवन का सच्चा जो एक दुख की कारण क्या है ये सब हम सही तरह नहीं जानते। हमें लगता है कि संसार के इस यहाँ के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे तो हम सुख का अनुभव, और इस तरह से हम प्रयास करते रहते हैं और लेकिन कभी यश नहीं मिलता और इस तरह से परेशान, यहाँ भी परेशान वहाँ भी परेशान। इस तरह गुरु को किस तरह से पहचानना चाहिए ये आज का विषय है, लेकिन हम कोई सच्चा गुरु नहीं है उसके विषय में हम क्यों बताएं, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे गुरु बैठे हैं। हाँ तो लेकिन ऐसे गुरु के होते हुए भी हमें कैसे किस तरह का उनके साथ रिश्ता होना चाहिए, वो प्रभुपाद खुद यहाँ पे तात्पर्य में एक अंतिम लाइन में बताते हैं, उसको मैं एक दो बार दोहराया, मैं फिर से बता रहा हूँ ये कि प्रभुपाद बताते हैं यदि मनुष्य को ऐसे गुरु की चरण कमल की धूल प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वो इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। सिर्फ इसी जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी। तो यहाँ पे एक उल्लेख किया है, कई लोग परिचित हो गए या नहीं हो गए, हमारे यहाँ पे नए लोग आए हैं अतिथिगण, भक्तों का चरण कमल धूल, कभी सुना है ऐसे कभी? ये तो बहुत स्वाभाविक होता है ना, जाकर पैर छूना। हाँ, ऐसा लगता है पैर छूने से यार कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे जीवन में, हाँ मुफ्त में मिल रहा है, जाके हाथ लगा लो। तो यहाँ पे भी वैसे ही बताया, तो कैसे समझे? देखो कलयुग में आप तो बार बार सुन के थक गए होगे, बार बार बोलते कलयुग कलयुग क्या बोल रहे हैं आप। कलयुग में ऐसे बताया जाता है कि जो सच्चा चीज है ना, जो धर्म सच्चा धर्म है, वो अधर्म के ज्ञान से पहचाना जाता है, और जो जो अधर्म है उसको लोग बहुत उत्साह से धर्म समझकर स्वीकार करते। तो उसके लिए भी एक उपमा दिया है, कलयुग एक तरह से ऐसे काले बादल से पूरे चंद्र और नक्षत्र को पूरा आवरण कर देता है। तो ऐसे हालत में आपको नक्षत्र चंद्र दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब बादल ऐसे आवरण करते हैं तो ज्यादा कौन दिखाई देंगे, वो जुगनू होते हैं ना, जुगनू थोड़े देर के लिए ऐसे ऐसे चमकते हैं, तो वही लगता है अरे ये इतना आकर्षित है। वो शायद कोई कुछ ऐसा जादू विदू दिखा देता है कुछ, तो बोलते हैं उसको अरे यही हमारा बेड़ा पार कर लेगा, यही उद्धार करेगा, ऐसे करके आश्रय लेते हैं। लेकिन बादल के उस पार जो है उसको अगर जानना है तो फिर ऐसे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आना पड़ता है। तो यही सबसे बड़ा भाग्य है। तो ये चरण धूल के बारे में यहाँ पे जो बताया है, इस संबंधित हम कुछ चर्चा करेंगे जो कुछ हमारे पास समय है। सो भागवत में ये चरण कमल धूल है ना, एक भक्तों की धूली, और कहीं ऐसे आता है कि उसका अभिषेक कर दो, लेप लगाओ। हाँ, तो समझ में, अरे इतना आसान है क्या? ये तो आसानी से मिल जाते हैं, जाके चरण लो लो अपने बार लगा लो बस, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ हम समझने की प्रयास करेंगे क्या होता है। तो भागवतम में एक ऐसा शुरुआत में या छठवें स्कंद में आता है जहाँ पे एक असुर है जिसका नाम है वृत्रासुर, जो बाहरी नजर से असुर शरीर में है, लेकिन अंदर उसका विचार क्या है, वैष्णवों का विचार है। तो वो कहता है अपने इंद्र से उनकी दुश्मनी थी, और इंद्र असुर को मारना चाहते, और असुर बोलता है तो मार दे मुझे। वृत्रासुर को निश्चित मालूम था कि मेरा पराजय होने वाला है, और वो ये करता है इंद्र को, मुझे मार डाल। क्यों ऐसे बोल रहा है कि मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं तो सिर्फ ये इच्छा करता हूं कि मेरे इस जीवन में अगर ऐसे चरण धूल मिल जाए भक्त के, तो मैं फिर से इस संसार में आऊंगा नहीं, मैं भगवान के धाम चले जाऊंगा। तो ये मैं श्लोक का उच्चार करूंगा, हाँ आप लोग तो उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की वाणी है तो इसको हमें सुनने से भी बहुत कुछ फायदा होता है हमें। एक मिनट, हरे कृष्ण। सिक्स हम तो पंडित नहीं है, हम श्लोक स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए हमें रेफर करना पड़ा। तो यहाँ वृत्रासुर कहते हैं, अतो हरे मे कुलशेन वीरा हार्ता प्रमत्येव शिरो यदीहा तत्रानुनो भूत बलिं विदाया मनास्विनां पादरजा प्रपत्से। मनस्विनाम पादरजा प्रपत्से। तो फिर से वही बात आ गया कि एक ऐसे भक्त की रज पाद रज, अगर ये मैं अगर अपने शरीर पे लेप करता हूं तो मुझे इस कर्म के बंधन से मैं मुक्त हो जाता हूं। ऐसे यहां पे वृत्रासुर ऐसे अवस्था में जहां पे वो मृत्यु का सामना कर रहे हैं लेकिन उनको मृत्यु का डर नहीं है, सिर्फ वैष्णवों के धूल उनके पद धूल की आश्रय लेने की वो अपेक्षा करते हैं। तो एक सवाल आता है कि कैसे हम, इसका मतलब इतना आसान है कि बस पद धूल ले लें? कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में बोलते हैं, प्रभु जी आप अपना चरण धूल दे दो ना थोड़ा, तो ये तो मजाक हो गया ना। क्या ये मजाक है? ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ कभी कभी झगड़ा भी होता है, वो एक का चरण धूल लेता है तो दूसरा बहुत ही क्रोधित हो जाता है, तुमने क्यों लिया, तो फिर उसका लेने लगता है और एक दूसरे के पैर खींचते हैं। और ये ऐसा कोई दिखावा भी नहीं है कि नो। हाँ ये सच है कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि ये जो वैष्णव की चरण धूल है बहुत ही उसमें बल होता है, शक्ति होता है। जैसे तीन चीजें बताए गए हैं, भक्तों के पद धूली और भक्तों के पद जल और भक्त के बुक जो झूठा होती है महाप्रसाद बोलते हैं। ये तीनों चीज लेने से आप परम सत्य को जान सकते, भगवान के भक्त बन सकते, प्रेम जागृत हो सकता है। अरे इतना आसान है क्या? तो ये तो बहुत ले सकते हैं, आसान लेना चाहिए, लेकिन उसका जो एक सच्चा जो तात्पर्य है हाँ वो कुछ अलग है। ऐसे नहीं कि जाके ले लिया तो हो गया। प्रभुपाद कहते हैं सच्चा तात्पर्य ये है, जो ऐसे भक्त हैं उसका आदेश आज्ञा पालन करना। जब आज्ञा पालन करते हैं तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो कृपा देते हैं, वो फिर वो चरण धूली के समान है। सिर्फ ऐसे चरण धूली लेने से, ऐसा जैसे मैंने बताया ना, आशीर्वाद दो बोलते हैं लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इसलिए आशीर्वाद लेते हैं लेकिन बाद में अपना ही मनगढ़ंत जीवन बिताते, उसमें वो चरण धूल का कोई महत्व नहीं। इसलिए लेप लगाना ठीक है, अगर मिलता है तो बहुत ही इज्जत से स्पर्श कर लगाना, या जल उनके पैर धुआ हुआ जल होता है बहुत लेना, बहुत अच्छा है उनके महाप्रसाद को लेना, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है कि आज्ञा प्राप्त सही है। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में विशेषकर ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया गया है, लेकिन हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। लेकिन इसी संदर्भ में हम यही कथा में इसके ये भी एक विवरण आता है कि जितने किस तरह से ये चरण धूल मिल सकता है और किस तरह से नहीं मिल सकता है, तो उसका यहाँ पे बताया गया है। ये भी हमारे पांचवें स्कंद में ही आता है और इस संदर्भ में ही आता है, जड़ भरत और रहुगुण का जो संवाद है। तो ये भी एक अच्छा श्लोक हमें, उसमें भी ये शब्द आता है, पाज रजो भी शेकम फाइव मे बी यू नो इट कैन से दैट। हे कृष्णा किधर गया है? वाई इज माई आईपैड वेरी स्लो? यस 5:12 या एनीवे ये जो श्लोक है, यू मेमोराइज, यू कैन स्पीक हियर, मेरा इसमें दिस नॉट ओपनिंग। यस रोम या पाद रजो अभिषेकम। तो यहाँ पे जड़ भरत बताते हैं रघुण, जब तक तुम ऐसे वैष्णवों का पद रज लेकर अभिषेक नहीं करोगे, तुम्हें ये ज्ञान सब सही तरह से समझ में नहीं आएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ ब्रह्मचार्य पालन करने से, गृहस्थ जीवन के नियमों को पालन करने से, वानप्रस्थ पालन करने से या संन्यास लेने से, जब तक तुम ऐसे वैष्णवों के चरण धूल को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम्हें नहीं आएगा। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उच्चार किया। और तो ये यही संदर्भ में आता है कि ऐसे और कड़ी तपस्या करने से, कड़ी धूप में बैठने से, ठंडे पानी में बैठने से, ऐसे करने से भी नहीं मिलेगा, जब तक तुम ऐसे वैष्णव को प्रसन्न कर वो तुम्हें जब आशीर्वाद नहीं देते हैं, तब तक। ये किसको बताते हैं? वही जड़ भरत 12वें अध्याय में बोलने लगता। तो यही फिर से हमारे 7वें अध्याय में भी आता है। प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं, तो वहां भी ये शब्द आता है, महिष यशम पाद रजो। हाँ, ऐसे अनेक जगह पे ऐसे आता है कि किस तरह से इसमें खास करके जब प्रहलाद बताते हैं तो उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं क्यों है कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनको अगर मालूम पड़ा है कि इस संसार में आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने से ही समस्या दूर हो सकती है, लेकिन कोई आता नहीं है आश्रय लेने के लिए। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको ऐसे एक वैष्णव का कृपा नहीं मिला है। अभी ये सवाल आता है, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे भी एक श्लोक है भागवत में बताया गया है कि वही चरण धूल जो फायदा कर सकता है वो आपको नष्ट भी कर सकता है। सो वो है 4वें अध्याय में, इट इज नॉट ओपनिंग, यू नो। ये श्लोक, सती जो है दक्ष की पुत्री है, शिव जी की पत्नी है, जब वो अपने देखती है कि अपने पिता, अपने शिव जी यानी अपने पति का अपमान करते हैं, तभी वो अपने पिता को कहते हैं, अरे तुम जैसे लोग जिन्होंने शरीर को स्वीकार किया है, जो असत को स्वीकार किया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारा पतन हो जाएगा। पतन करते तुम्हारे में जो भी तेज है, जो भी अच्छे लक्षण हैं, अच्छे गुण हैं, जो भक्ति तुमने जो कुछ बनाया, वो सब कुछ चला जाएगा। तो तभी फिर से वही शब्द आता है कि रज के बारे में आता है यही शब्द। तो इस तरह ये तो वहां तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फायदा कर सकता है वो नुकसान भी कर सकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके लिए कुछ एक समझाते हैं। जिस तरह से कड़ी धूप होती है, कड़ी धूप में कुछ वनस्पतियां सूख जाती हैं, लेकिन वही कड़ी धूप में कुछ ऐसे फूल है, वनस्पतियां खिलने लगते हैं, वही कड़ी धूप। इसका मतलब है जो स्वीकार करता है कृपा उसके ऊपर है, कैसे वो स्वीकार करेगा। अगर उसका भाव है अपराध का भाव है, वो निंदा करता है, हाँ ईर्ष्या है, क्रोधित अवस्था में कुछ ऐसे बोल देता है, तो फिर वो उसको पूरा सुखा देता है। सुखा देने का अर्थ है सब कुछ मिटा देता है, लेकिन वही उसको खिला भी सकता है। जिस तरह से कोई पूरी तरह से आश्रय लिया है अपना गुरु का और इस तरह से वो सेवा कर रहा है समर्पित, तो तभी वही चरण धूल, हाँ जैसे वो सूरज का उदाहरण दिया है किस तरह से खिलने लगता है, वो इस संसार के बंधन से उसको मुक्त कर देता है। तो ये है चरण धूल की शक्ति। तो इस संदर्भ में ऐसे बताया जाता है कि जो वैष्णव होते हैं बहुत ही दयालु होते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं। तो कहीं ऐसे उदाहरण दिया है, उसमें से ये तो एक तो उदाहरण हम सब जानते हैं कि किस तरह से नित्यानंद जब मदाय आकर बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मोरे से बहुत गलती हो गई, तो उन्होंने तो अपराध किया था लेकिन उन्होंने माफ कर दिया। उसी तरह से इस संदर्भ में भी रहुगुण ने बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए थे जड़ भरत की तरफ, तो उन्होंने भी क्योंकि वो प्रणाम दंडवत करके उनसे माफी मांगा तो माफ कर दिया। तो सवाल ये आता है लेकिन वैष्णव जो होते हैं उनको तो निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ही प्रशंसा से फर्क पड़ता है। तो जब निंदा करते हैं तो वैष्णव को कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उनका जो चरण धूल है वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। अभी चरण धूल कैसे क्रोधित होता है इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और एक उदाहरण देते हैं। जैसे कड़ी धूप में जब आप चलते हैं बहुत ही गर्मी, आप सर के गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जमीन में चलते समय रास्ते में जो जमीन का जो गर्मी है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, पैर नहीं रख सकते, यहां पे बर्दाश्त करते हैं। इसलिए भगवान अपने लिए अपराध माफ कर लेते हैं लेकिन जिन्होंने उनका चरण का आश्रय लिया है चरण धूल उसके लिए वो माफ करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर उसके लिए क्या पर्याप्त, तो उसके लिए जाके ऐसे भक्त से माफी मांगे और प्रशंसा करे। अरे लेकिन वो वैष्णव को तो प्रशंसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रशंसा भी फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्या, नहीं, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उसका चरण धूल जो है वो शांत हो जाता है, जो क्रोधित था बहुत ही गुस्से में था वो शांत हो जाता है, इस तरह से उसको माफ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ऐसे हैं क्या वैष्णव, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उनकी प्रशंसा करूं या निंदा करूं उनको तो फर्क नहीं पड़ता है, बोल के अरे हम ऐसे करेंगे तो फिर फंस जाएगी। तो हर एक भक्त का एक डर होता है कि कहीं मैं ऐसे तो नहीं करूं, क्योंकि ये भगवान भी माफ नहीं करते। तो इससे संबंधित एक बहुत ही अच्छा एक ये उदाहरण दिया गया है। एक ऐसा एक राजा था उसका नाम था उपाचैनवसु, सुना आपने नाम ऐसे उपाचैनवसु नाम का, उन्होंने देवता लोगों के सहकार्य में एक युद्ध लड़ा असुरों के साथ और युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद वो राजा था तो उसको लगा ये क्या किया मैंने, इतना सब हिंसा किया मैंने, इतने लोगों को मारा, तो सब कुछ त्याग कर वो पाताल लोक में जाकर तपस्या करने लगा। जब असुरों को पता चला कि वो जिन्होंने हमें पराजित किया था वो आज पाताल लोक में सब कुछ छोड़कर तपस्या कर रहा है, जाकर अपन उसको आक्रमण करते हैं, तो उन्होंने सब हथियार लेकर गए उसको मारने के लिए। तो उसके सामने जब आए तो वो ऐसे एकदम स्तब्ध हो गए, उनका हाथ हिलने नहीं लगा, तो उनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो गया। तो अपने गुरु के पास गए शुक्राचार्य के पास, ये क्या हो गया, तो शुक्राचार्य ने कहा देखो वो पूरी तरह से उसने आश्रय लिया है, उसकी वो शक्ति के कारण तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो भक्ति की शक्ति है उसको एकदम कमजोर कर दो। तो क्या करना पड़े, जाओ उसको जाके बताओ कि भगवान नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है ही नहीं, शास्त्र ये सब झूठ है। तो ऐसे जाके वो जो उपाचैनवसु नाम का जो राजा जो पाताल लोक में कर रहा था उसके सामने आके वो लोग जोर जोर से ऐसे बोलने लगे। तो तभी ये बहुत ही दुखी हो गया, बोले क्या मुझे मारने के लिए किस हद तक पहुंचे हैं लोग, भगवान नहीं है ये भी बोलने के लिए तैयार हो गए, हाँ शास्त्र सब झूठ है ये भी, तो बहुत दुखी हो गए। और इस दुख में वो प्रार्थना करने लगे, हे भगवान आप इन लोगों को कुछ ऐसा स्वाद दो भक्ति का, ऐसे टेस्ट दो कि ये स्वाद लेने से ये लोग इस तरह के विचारों को भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रार्थना किया तो भगवान ने ये वरदान वो असुरों को दिया और सब असुर लोग भक्त बन गए। कितना बड़ा, तो ये एक तरह से ये भी है कि वैष्णवों का जो एक प्रार्थना होती है तो इसके लिए वैष्णवों के ऐसे एक शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका आश्रय लेना उनको प्रसन्न करना यही सबसे बड़ा शक्ति है। हाँ ये निश्चित ये जो लेप लगाना भगवान धूल लगाना उनके जो पद धोए हुए पानी या उनके लेना ये मिलता है तो लेना चाहिए लेकिन उसको एक दिखावा बोल के नहीं करना चाहिए, क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्था में भी अब देखें कई लोगों ने प्रभुपाद के जो वापू का संगी नहीं हुआ है उनको, उन्होंने तो सिर्फ वाणी का संग किया, क्योंकि वापस संग करने का खतरा होता है। ज्यादा आप गुरु के साथ रहते हैं तो ऐसे भी लगता है कि गुरु भी हमारे जैसे सामान्य है, वो भी, उनको भी टॉयलेट जाना पड़ता है, उनको भी भूख लगती है, वो भी सोते हैं, तो ये क्या हमारे जैसे ही है, तो इसका मतलब वो तो हमारा व्यवहार तो तभी। तो इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, तीन ऐसे चीज है उसके संपर्क से बहुत ध्यान में, एक है गुरु, एक है राजा और तीसरा है अग्नि। अग्नि के भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा पास जाएगी आप, आपको जला देगा। इसी तरह से वापू जरूर चाहिए, लेकिन वापू ज्यादा समय रहता नहीं है, तो रहता है सिर्फ वाणी। लेकिन आज के दिन भी देखो ज्यादातर हम लोग सब भक्त बन गए हैं, किसी भक्त ने बताया, लेकिन ज्यादा तो भक्त कैसे बन गए, प्रभुपाद के किताब पढ़कर, प्रभुपाद की वाणी का संग लेकर। तो ये वाणी की शक्ति। तो ऐसे अनेक ऐसे चरण धूल से संबंधित है, लेकिन सबसे अच्छा एक उदाहरण है वो जो श्री संप्रदाय में आता है कि किस तरह एक गुरु की, गुरु अगर दया करते हैं या कुछ ऐसे दिल में विचार आता है उनका कि इस भक्त का उद्धार करना चाहिए, तो उसके लिए कोई नहीं आ सकता, भगवान भी नहीं आ सकते हैं, वो हो जाते। तो ये कथा आपने सुना है, लेकिन फिर भी बहुत रोमांचक है ये कथा। तो एक बार रामानुजाचार्य भगवान के विग्रह का एक जुलूस जा रहा था, सब लोग पूरे श्रीरंगम में सब लोगों का पूरा मन आकर्षण, पूरा इतने श्रृंगार किए हुए विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, कोई फूल चढ़ा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य का नजर एक ऐसे व्यक्ति पर गया, वो कुछ अजीब सा कर रहा था, ऐसा कोई नहीं कर रहा था, और उसको इस आसपास जो हो रहा है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा वर्णन किया है कि उसके साथ जो एक सुंदर स्त्री थी, तो वो चल रही थी इस दिशा में, तो ये अपने पीठ को इस तरफ करके उसके चेहरे देख के चल रहा था, यानी पीठ पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा दृश्य देखेगा तो कोई तो बोलेगा नहीं, बेवकूफ, कोई पागल आदमी है। तो रामानुजाचार्य बोले, ये क्या हो गया है इसको, जरा पता लगाओ ये क्या कर रहा। और उसने छतरी भी पकड़ा है और हवा भी मार रहा है, और उसके स्त्री के मुख से थोड़ा सा ऐसे पसीने का बूंद आता तो जल्दी पूछ लेता था। तो ये शिष्य ने गया, बाबा अरे तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, रास्ते में हो और यहाँ भगवान का ये तुम ऐसा क्या आकर्षण इस स्त्री के मुख में कि तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है। तो उसने कहा, इसका जो चेहरा है ना इतना सुंदर है, वो चेहरे की बात छोड़ दो, लेकिन इसके आंखें इतने सुंदर है कि मैं मेरे नजर को ही हटा नहीं सकता, और वो उसके इतनी तरह से आसक्त हुआ था। तो रामानुजाचार्य को जाके शिष्य ने बताया, वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा है क्या, क्या किस तरह का मूर्ख व्यक्ति है। अभी भावना तो क्या होगी उसमें, प्रेम तो नहीं होगा, काम वासना ही होगी ना, काम के भाव से कि मेरी भोग करने के लिए इतनी सुंदर। तो बुला उसको, तो रामानुजाचार्य ने, अगर मैं इस चेहरे से या इस आंखों से भी ज्यादा आकर्षित तुम्हें दिखा दूं, तो उसने जवाब दिया, नामुमकिन, ऐसा कोई है ही नहीं संसार में, लेकिन अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम क्या करोगे, तो मैं इसको छोड़कर मैं पूरा उसके आश्रय लूंगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं वो चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह 4:30 बजे तुम मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें ऐसा चीज दिखाऊंगा। तो ये रात को जाके सोया, सोचता है अरे वो भी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कोई, और सुबह के वक्त 4:30 बजे, 4:30 बजे कोई भी व्यक्ति खूबसूरत लगता ही नहीं है, और नींद से उठा हुआ चेहरा कैसा होगा उसका। तो उसके दिल में पहले से ही है कि हो ही नहीं सकता। तो गया दूसरे दिन, तो रामानुजाचार्य अंदर लेके गए, हाँ, और आरती हो रही थी, तो आरती का दिया जब भगवान के चेहरे पे गया, तो जैसे उसका नजर चेहरे पे, हमने भी सब दर्शन किया है, हमको कोई ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि भगवान की आंखें देख के हम पूरी तरह से समर्पित हो गए, लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्धर, हाँ धनुर्दास, धनुर्दास था उसका नाम, धनुर्दास, बस उसको इतना आकर्षित लगा। अभी हम सोचने लगे कैसे आकर्षित लगा, ऐसे ऐसे रावणाचार्य ने क्या किया। तो है गुरु की शक्ति। तो उसी संबंधित, तो उसके बाद वो पूरी तरह से समर्पित और बहुत ही अच्छा धनुर्दास इतना अच्छा भक्त बन गया। फिर वो गृहस्थ जीवन में एक बहुत अच्छा उदाहरण था उसका, कि बहुत लोग उसके वैराग्य जीवन से बहुत ही प्रेरित हो गए। तो इसी संबंध जो पद जल है, तो उससे भी रामानुजाचार्य के लीला में एक ऐसी कथा थी। एक बार रामानुजाचार्य बहुत ऐसे भक्तों को लेकर एक गांव में गए और कोई आया ही नहीं उस गांव में, कोई कथा सुनने आया ही नहीं। तो शिष्यों ने कहा रामानुजाचार्य महाराज छोड़ दो, हम लोग दूसरे गांव जाते हैं। नहीं नहीं मुझे पता लगाना है कि ऐसा क्यों है कि कोई आया नहीं यहाँ पे, तो जाके पता लगाओ कि ये लोग कौन सा पानी यूज करते हैं, कौन सा कुंड का पानी पीते हैं, क्या करते हैं। तो जाके शिष्य ने पता लगाया, हाँ यहाँ की एक बहुत ही ऐसा विशाल अच्छा कुंड है और सब गांव के लोग यही करते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं इंटरेस्ट, इसलिए वो आए नहीं, आपका दर्शन भी करने नहीं आए, छोड़ो कथा सुनने की सवाल ही नहीं आता। तो रामानुजाचार्य देखो क्या उनकी श्रद्धा, उन्होंने कहा तुम लोग जाकर अपने चरण उस कुंड में जाके धो। तो अपने सब शिष्यों को कहा जाके उस कुंड में धोने को कहा, और दूसरे दिन आश्चर्य की बात है कि रामानुजाचार्य बैठे थे, बहुत लोग कथा सुनने आए। देखो ये कथा लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी मनगढ़ंत नहीं है, इसका मतलब उनके एक भक्त के चरण धोए हुए पानी में इतनी शक्ति है कि जो भी भौतिक इच्छाएं, जो भी आसक्ति थी वो गांव वालों में, वो सिर्फ एक बार उन्होंने ले लिया और उनके मन में ऐसी चीजें उभरने लगी और वो कथा के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे कथाएं, सिर्फ आज का विषय यही है कि गुरु कौन होता है। गुरु ऐसे नहीं कि सिर्फ एक कोई चमत्कार दिखाने से गुरु नहीं होता है, गुरु में ऐसा एक शक्ति होना चाहिए कि जो हमें अज्ञान अवस्था से ज्ञान की स्थिति में लाकर, इस बद्ध अवस्था से मुक्त कर, संसार के हर तरह की पीड़ा से मुक्त कर, ऐसे अनुभव दे जो इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता है। ये है श्रील प्रभुपाद ने किया हुआ ये चमत्कार। हम कितना भी प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे वो कम ही रहेगा। प्रभुपाद के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब उन्होंने पाश्चात्य देश गए तो उनको लगा और एक स्वामी जी आ गए, इनके पहले बहुत सारे स्वामी आए हैं और इन्होंने भी ऐसा ही कुछ ऐसे, किसी ने कुछ भस्म निकाल के दिखाया, किसने सोना निकाल के दिया, तो एक बार प्रभुपाद के पास भी आ गए। स्वामी जी पूछा उन्होंने, आप भारत देश से आए हैं तो आप किस तरह के चमत्कार दिखा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जवाब दिया, चमत्कार देखना है तुम्हें, सामने देखते हो इतने सारे लोग बैठे हैं। तो वो जो पत्रकार था, ओ तो अभी कुछ करेगे इन लोगों के ऊपर, शायद इनको ऐसे अदृश्य कर देंगे या उठा देंगे या कुछ ऐसा, क्योंकि उसको और कुछ समझ में नहीं मालूम था, चमत्कार जादू यानी है। तो प्रभुपाद ने पत्रकार को जवाब दिया, तुम ये देखते हो ना नवयुग, सब 18 19 20 25 साल के लड़के लड़कियां देख रहे हो उनको, ये लोग सब लोग नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, व्यभिचार कर रहे थे, शराब, कभी नहाते नहीं थे, कभी कुछ उनको कुछ नहीं, बस रास्ते में लेटे हुए रहते थे, जो मन में आया भोग करना, संभोग करना, कुछ क्लीनलीनेस कुछ नहीं। ये लोग आज सुबह 3:30 बजे उठते हैं, भगवान का नाम जाप करते, मंदिर जाते हैं, सेवा करते, एकादशी पालन करते हैं, और देखो उनका चेहरा कैसा है, तिलक लगाया हुआ, जो महिलाएं हैं पूरा साड़ी पहन के पाश्चात्य देश, हाँ बाल भी ऐसे किए, पत्रकार को दिखा, देख रहा है ये सब, तो देखा है पत्रकार ने, तो यही मेरा चमत्कार है। कोई बाहर से सोना बिना दिखाकर, कोई ऐश दिखाकर किसी को प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का जीवन, विचार, श्रद्धा, और यही नहीं पूर्ण अपने जीवन को समर्पित करना, इतना बदलाव ले आना, ये कोई चमत्कार कोई कर सकता है ऐसे? क्योंकि प्रभुपाद के पास वो शक्ति थी। इसलिए कई बार उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग तो ऐसे हालत में, ऐसे पाप कार्य में लगे हुए थे और आप हमको सब गोपी के बारे में बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध प्रेम के बारे में बता रहे, ये सब हमारी क्या योग्यता है? तो प्रभुपाद ने तभी जवाब दिया कि तुम्हारे में कुछ योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई। अभी क्या इसका मतलब क्या? प्रभुपाद बहुत ही एक घमंड से बोल रहे हैं कि मैंने किया, ये तो निश्चित नहीं थी। हम तो प्रभुपाद को जानते हैं, हाँ, जो कुछ उनके लीलाओं में, ये बताना चाहते हैं कि वो वैष्णव आचार्यों का चरण धूल, जो उनके उन्होंने आज्ञा पालन किया है प्रभुपाद ने, उसी का जो चरण धूल का शक्ति वो लाकर इन लोगों के साथ जोड़ दिया। तो जैसे इन लोगों को मिल गया, जो भी स्थिति में थे वो, हो सकता है कि उनमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन ऐसे भक्त के संग में आने से उनका भी जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो इस तरह से ये हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ढूंढते हुए कौन है भाई शुद्ध भक्त हमारे यहाँ है। हाँ, इतिहास में ऐसे उन्होंने करके दिखाया है, तो आज के दिन वो ऐसे ग्रंथ छोड़ के गए हैं हम सबके लिए, भगवद गीता है, भागवतम है। वो भी चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर सिर्फ प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से, चरण धूल लेने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ उनकी आदेश, उनकी आज्ञा का पालन कर। तो ये आदेश आज्ञा का पालन करने के लिए हम सबके लिए उपलब्ध हैं, सिर्फ हम अगर तैयार हैं तो हमारा भी जीवन, जिस तरह से धनुर्दास काम वासना से उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, उसी तरह से हर एक बद्ध जीव के हृदय में इस तरह के विषयों के संपर्क में आने से जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और वो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। Thank you.